কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাখে পাখে আমি তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব পাখে পাখে
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর ষট শ্রী শ্রীমদ্ভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কি ইসকন বিবিধি ফাউন্ডার আচার্য শিল প্রভুপাদ কি জয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর ষট শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল প্রভুপাদ কি নামাচার্য শিল হরিদাস ঠাকুর কি প্রেম সে কহু জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস আদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি জয় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি জয় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ কি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়ামুদীরহে নষ্টপ্রায়েষু ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া ভগবত্যুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নষ্টকি আজ একাদশী হ্যাঁ इसलिए शिल प्रभुपाद लीलामृत से थोड़ा बहुत सुनेंगे। ये प्रभुपाद लीलामृत का तीसरी वॉल्यूम से है जिसका शीर्षक है स्वामी जी का हिप्पियों को आमंत्रण। वैसे एकादशी ये माधव तिथि कही जाती है और भक्ति जननी भी अर्थात इस दिन पर भगवान का स्मरण करने से, तपस्या करने से भक्ति में प्रगति होती है या भक्ति हृदय में प्रकट होती है। और इसीलिए ऐसे दिवसों पर भक्ति प्रदान करने वाले आचार्यों का स्मरण, उनकी लीला या उनके जीवनी के द्वारा हमें कर लेना चाहिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद के विषय में हम लोग सुनेंगे। 16 जनवरी 1967 जैसे ही यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान सैन फ्रांसिस्को में उतरा, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, ये जो इमारतें हैं ये माचिस की डिबिया की तरह लग रही हैं। विचार करो कृष्ण की दृष्टि से ये कैसा लगता होगा। यहाँ इस केवल एक वाक्य से हम लोग कई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एक भक्त की दृष्टि। श्रील प्रभुपाद प्लेन में से केवल बिल्डिंग्स को देख रहे हैं जो बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, माचिस की डिबिया की तरह, लाइक अ मैच बॉक्स प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं कृष्ण को, उनको स्मरण आ रहा है कृष्ण का। तो ये भक्त का लक्षण है, वो जो भी चीज देखे, जहां भी जाए, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, कृष्ण का स्मरण करता है। और हमारे जैसे लोगों का क्या लक्षण है, हम कृष्ण के समक्ष होकर भी कृष्ण का दर्शन या कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते। तो हम में और भक्त में ये अंतर है। तो प्रभुपाद नायगरा फॉल्स देखने गए, बहुत विशाल झरना है, वो पानी गिरता है ऊपर से, बहुत सारे लोग जाते हैं देखने। प्रभुपाद ने देखते ही कहा, श्री कृष्णा सेनर्जी, देखो कृष्ण की कितनी बढ़िया शक्ति है। तो उन्होंने जल को, उस अद्भुत दृश्य को कृष्ण की शक्ति के रूप में देखा। दूसरी ओर एक बार एक फिजिसिस्ट जो फिजिक्स में या गैसेस या शक्तियों पर जो कार्य करते हैं, वो एक बार तिरुपति आए तो बालाजी के सामने खड़े हुए और बालाजी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हियर, मैं मुझे यहाँ पर एक सकारात्मक शक्ति का अनुभव हो रहा है, मेरे सामने भगवान हैं, उनको भगवान नहीं दिख रहे। तो प्रभुपाद जब शक्ति को देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण करते हैं, और ये मूर्ख लोग कृष्ण को देखकर शक्ति का स्मरण करते हैं। तो हम सब की स्थिति ऐसी है। तो यहाँ इस वाक्य से पहली चीज हम समझते हैं कि प्रभुपाद जो भी चीज देखते थे, जहां भी देखते थे, उसको कृष्ण से जोड़ते थे, उसको कृष्ण की मानते थे, और यही कृष्ण भावनामृत का आधार है। श्रील प्रभुपाद 14 नवंबर 1977 को अपने देह को त्यागते हैं, और उसके एक दो दिन पहले जब अनुवाद कर रहे होते हैं, उनके मुख पर माइक्रोफोन लगा है, प्रभुपाद लेटे हैं, हिल नहीं सकते, लेकिन भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद का 13वें अध्याय का अनुवाद चल रहा है, और उसमें प्रभुपाद कहते हैं, अब ये देखिए, जब कोई आचार्य होते हैं, वो जब अपना देह छोड़ते हैं, तो उस समय जो शिक्षाएं देते हैं वो उनकी सारी शिक्षाओं का सार होता है। सारे आचार्यों ने ऐसा ही किया। रामानुजाचार्य जब वो अपना देह छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कई उपदेश दिए, करीब 74 उपदेश उन्होंने दिए जो लिखे हुए हैं उनके, रामानुजाचार्य के, और उनमें से 71 उपदेश केवल वैष्णव सेवा पर है। कैसे वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों को कैसे आदर करना चाहिए, उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, तो ये रामानुजाचार्य ने दिया, क्योंकि उनकी सारी शिक्षाओं का सार था वैष्णव सेवा। इसीलिए इस गुण को चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव संप्रदाय से लिया। वैष्णव सेवा। तो रामानुजाचार्य ने अपने जीवन के अंत में उनको दिया। अब प्रभुपाद अपने प्रकट जीवन की लीला को समाप्त कर रहे हैं, तो अब वो जो संदेश देंगे वो उनकी सारी शिक्षाओं का सार होगा। और प्रभुपाद उस समय कहते हैं, ये आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुछ भी है ये कृष्ण का है। व्हाटएवर इज देयर बिलोंग्स टू कृष्णा। इफ वन अंडरस्टैंड्स दिस, अगर ये कोई समझ जाए तो वो कृष्ण भावना भावित है। बस बड़ी सरल परिभाषा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहन ज्ञान की परिभाषा है कि प्रभुपाद कहते हैं कि बस यही समझना। और वो अपने उदाहरण से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उसको दिखलाते हैं कि प्रभुपाद हर चीज को देखकर कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो ये पहली चीज, इस एक वाक्य से हम लोग। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण जो इस वाक्य में हमें प्रकट आती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद केवल एक सिंपल जरा से वाक्य कहकर समझा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, देखो ये बिल्डिंग माचिस की डिबिया की तरह लग रही है, हमें कृष्ण की दृष्टि से क्या होगा। अर्थात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम जो भौतिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, चाहे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े मशीन बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमने आधुनिक तौर से बहुत प्रगति कर ली है, पहले का मानव पत्थरों में रहता था, गुफाओं में रहता था, हम लोग अभी बहुत आगे आ गए हैं, एसी बना लिया, ये बना लिया। प्रभुपाद कह रहे हैं अहंकार मत करो। जब आप में से जो लोग प्लेन में गए हैं वो जानते हैं कि जब प्लेन नीचे होता है तो वही बिल्डिंग बड़ी दिखाई देती है, धीरे 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 प्लेन उठने लगता है, ऊपर जाता है, बिल्डिंग छोटी होने लगती है, और ऊपर जाता है, बिल्डिंग जरा सी हो जाती है, और ऊपर बिल्डिंग दिखती भी नहीं है। तो वही बिल्डिंग जो नीचे बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे जैसे प्लेन ऊपर गया बहुत छोटी हो जाती, दिखती भी नहीं है। इसी तरह जब जीव अपनी चेतना को बहुत निम्न स्तर पर रखता है तो उसको ये भौतिक जगत बड़ा आनंदमय, बड़ा विशाल, बहुत बड़ा ब्रह्मांड, सारे सुख का भंडार दिखाई देता है, जब चेतना बहुत नीचे स्तर पर होती है। लेकिन जैसे जैसे चेतना को उठाता है तब उसको ये जो भौतिक जगत के आनंद है, या जिनके पीछे भौतिक जगत के लोग भाग रहे हैं, मान प्रतिष्ठा, धन भोग, स्त्री संग इत्यादि, ये बहुत निम्न लगने लगता है, बड़ा छोटा लगने लगता है। तो जैसे चेतना ऊपर जाती है तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ किस नीच अवस्था में थे, निम्न अवस्था में थे। हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रहे थे, बहुत बड़ा बड़े आनंद में मान रहे थे, लेकिन जब चेतना ऊपर उठती है तब पता चलता है कि बहुत तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट। तो उस समय धन का आना, मान प्रतिष्ठा का आना, भोग का आना, ये सारे बड़े तुच्छ हो जाते हैं जीव के लिए, क्योंकि वो अपनी चेतना को उठा लेता है। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात इस एक वाक्य से हम सीख सकते हैं। प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि कृष्ण की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, अपनी दृष्टि से नहीं। जैसे कई बार बताया जाता है, हम लोग यहाँ एक छोटे से शहर में हैं, ये शहर एक छोटे राज्य में है, एक ये राज्य एक छोटे देश में है, ये देश एक कॉन्टिनेंट में है, ये कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया में है, हम इसी चीज को बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन अगर बड़ी दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो मैप में ये दिखाई भी नहीं देगा, ये जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं। तो गूगल के द्वारा बहुत बार जूम 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 करके शायद दिखाई दे जाए, लेकिन वैसे मैप पर नहीं, बड़ा छोटी चीज है ये। तो इसी तरह प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अगर अपनी चेतना को हमें ऊपर उठाना है तो हर चीज को कृष्ण की दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए, अपनी दृष्टि से नहीं। हमारी दृष्टि से चीजें, तुच्छ चीजें बहुत बड़ी लगेंगी, कृष्ण की दृष्टि से वही विशाल चीजें बड़ी तुच्छ लगेंगी। तो सोचिए भक्ति में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं। सबसे पहला हमारा मान सम्मान, सबसे पहले हमारे विचार, मेरा मत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने मत को महत्व देते हैं, अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं, अपनी बुद्धि से प्रकट हुए विचारों को महत्व देते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं तुच्छ है। कृष्ण की दृष्टि से देखिए, अगर विचार करना है तो कृष्ण की दृष्टि से कीजिए। जैसे हम एक बार गोकुल धाम में थे तो वहां पर पानी जमा हुआ था और उसमें कुछ कीड़े इधर से उधर उधर से इधर जा रहे थे, इतने बड़े बड़े कीड़े थे, बस कुछ नहीं, पानी में इधर जाते थे उधर इधर इधर उधर बस वही करते थे, फिर शायद थोड़ा थक जाते थे, एक जगह रुकते थे, फिर वही इधर से उधर इधर से उधर। और हमें देखकर हंसी आ रही थी, हमने कहा, सोच रहे थे कि ये जो कीड़ा है ये सोच रहा होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ मैं, इधर से उधर उधर से इधर से उधर, बस यही उसका जीवन है। हाँ, भगवान की योजना से वो भी किसी कार्य को कर रहा है, क्योंकि प्रकृति के नियम के पालन से कर रहा है, तो हो सकता है वो पानी को साफ कर रहा हो या कोई चीज, लेकिन उसे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और हमारी दृष्टि से हम देख रहे थे कि कीड़ा इधर से उधर जा रहा है, बस यही उसका जीवन है, थोड़े समय बाद मृत्यु आ जाएगी, मर जाएगा। और फिर हमने सोचा कि जब देवता ऊपर से हम लोगों को देखते होंगे तो वो भी हंसते होंगे हम लोगों पर कि ये कीड़ा दिन भर काम कर रहा है, 9 बजे जाता है, वापस 5 बजे आता है, फिर 9 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 5 बजे, सोचता है यही जीवन का उद्देश्य है, मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा बस। और बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता है, मतलब परिवार में चला जाता है, पत्नी का संग करता है, बच्चे उत्पन्न करता है, फिर 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। तो यही जीवन है। देवता देखकर हंसते होंगे कि ये कीड़ा क्या अपने आप को, हम लोग कितना महान मानते हैं अपने आप को, मैंने इतना कर लिया, 30 साल कमाई किया, 40 साल किया। और फिर अगर देवता ऐसे देखते तो भगवान की दृष्टि से क्या होगा, वो तो हंसते भी नहीं होंगे हम लोगों के ऊपर कि क्या हंसे ये इतना मूर्ख व्यक्ति। तो इसीलिए सारे कार्य भगवान की दृष्टि से करना चाहिए। कृष्णस व्यू पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, नॉट एनी वन एल्सेस व्यू पॉइंट। हमारे लिए कृष्ण का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है, किसी और का नहीं। और कृष्ण का दृष्टिकोण हमें आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये इस एक वाक्य से हम लोग समझ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद 71 साल के थे और ये उनका पहला हवाई जहाज से यात्रा थी। रणछोड़ 19 साल के थे और उन्होंने सूट और टाई पहना हुआ था, जो कि शिला प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उस समय। वो एक नए भक्त थे, लेकिन उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया था और सैन फ्रांसिस्को तक शिला प्रभुपाद को प्लेन से ले जाने की इच्छा जाहिर की थी और प्रभुपाद के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। तो देखिए, शुरुआत की अवस्था है, शिला प्रभुपाद सन्यासी हैं, उनके सेक्रेटरी सूट और टाई में हैं, प्रभुपाद 71 वर्ष के, उनके सेक्रेटरी 19 साल के हैं। और नए भक्त हैं, ही वॉज अ न्यू डिसाइपल, अभी अभी भक्त बने और शिला प्रभुपाद के सेक्रेटरी। आप सोचिए आगे चलकर, ये तो 67 की बात है, 73-74 में तो बड़े बड़े भक्त वो क्या कहते हैं कि तरसते थे कि हमें बस कुछ समय शिला प्रभुपाद के सेक्रेटरी बनने की इच्छा, बनने का चांस मिल जाए या केवल उनके साथ जाने का। हमने कई जगह पर पढ़ा है कि जब सुबह प्रभुपाद वॉकिंग के लिए जाते थे तो उनके साथ कौन जाएगा, इसमें भी प्रतिस्पर्धा चलती थी, केवल वॉकिंग एक आधा घंटा एक घंटा जाके आने के लिए। लेकिन अभी नया है आंदोलन, तो देखिए एक नया भक्त रणछोड़ 19 साल के, अभी अभी बने सूट टाइम में प्रभुपाद के सेक्रेटरी बन के उनके साथ जा रहे हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद ने आंदोलन को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे कष्टों को सहा और किन चीज़ों पर उन्होंने समझौता किया। प्रभुपाद ने भक्ति के मूल सिद्धांतों पर कभी समझौता नहीं किया। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। लोगों ने कहा प्रभुपाद को, जब वो अमेरिका जा रहे थे, स्वामी जी दो चीजें कभी मत कहिएगा उन लोगों को, मांस खाने को मना मत कीजिएगा और अवैध संघ के लिए मना मत कीजिएगा, नहीं तो वो लोग आपको नकार देंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभुपाद ने इन्हीं चीजों को जाकर बोल्डली कहा, बड़े निर्भय होकर कहा ये नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने सिद्धांतों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। हाँ, ये सब चीजों पर ठीक है, उनका सेक्रेटरी उसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए, सैफरन होना चाहिए, ये सब ठीक। छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे। तो ये हमारे लिए संदेश है, प्रभुपाद संदेश दे रहे हैं कि जब हमें आंदोलन बढ़ाना हो तो मूल सिद्धांतों पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कोई आपसे आकर कहे कि आप हम मांस खाते हैं तो कोई तकलीफ है, बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं है, खाते रहिए, शराब पीते हैं पीते रहिए, नहीं प्रभुपाद ये नहीं, बंद करो, उसको बंद कराना। हाँ, लेकिन बाकी चीजें अभी कोई पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कोई धोती पहन रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। तो कभी कभी, लेकिन ये शुरुआत की अवस्था में प्रभुपाद को बहुत सारे समझौते करने पड़े आंदोलन को बढ़ाने के लिए। जैसे उस समय नियम था कि अगर कोई ज्वाइन करता है आंदोलन में आता है, 6 महीने में उसकी पहली दीक्षा हो जाती थी, 1 साल में दूसरी दीक्षा और 4 साल में संन्यास, तो निश्चित था। और संन्यास भी भक्त इसीलिए लेते थे क्योंकि महाप्रसाद की प्लेट मिलती थी संन्यासियों को, केवल इसलिए संन्यास लिए। और दूसरा एक भक्त बता रहे थे कि दूसरा संन्यास इसलिए लेते थे कि फिर टेम्पल प्रेसिडेंट फोर्स नहीं कर सकते थे सन्यासी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बाकी सबको फोर्स था। जो भी मंदिर में रह रहे हैं उनको सुबह बस प्रसाद लिया, बुक उठा के बाहर जाओ, दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और वापस, लेकिन सन्यासियों के लिए थोड़ी छूट थी। तो ये दो कारणों से 4 साल के बाद सन्यास ले लिया जाता था। प्रभुपाद ने जब पहली बार दीक्षा दी, भक्तों को पता नहीं था दीक्षा क्या, दीक्षा होने के बाद उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी दीक्षा का मतलब क्या है? एंड प्रभुपाद ने कहा, दैट मीन्स यू शुड कंसीडर मी एज गॉड। और सब झटका लग गया, अभी तक स्वामी जी से सुना था वन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ गॉड इज अ डॉग, GOD DOG, कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। आज स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान की तरह अब से आपको ट्रीट करना है, तो एकदम। फिर जाकर उन्होंने पूछा कि इसका मतलब, तो प्रभुपाद ने समझाया कि स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट गॉड, आध्यात्मिक गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसकी सेवा भगवान के रूप में होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। तो ये प्रभुपाद ने और बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, हम लोग पढ़ते हैं इसी में। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्याओं को साड़ी पहनना नहीं आता था शुरुआत में, प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे थे, सन्यासी 70-72 साल के, वो सिखा रहे हैं स्त्रियों को, शादी कराई प्रभुपाद ने। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं ना कि सन्यास वो नहीं है न निराग न चक्रिया, वो अग्नि नहीं, वैसे सन्यासियों के लिए अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, विवाह में तो बहुत कम जाते हैं। प्रभुपाद ने विवाह करवाए खुद बैठकर, पूरा व्यवस्था खुद मंत्र पढ़कर उन्होंने पहला विवाह करवाया, कोई नहीं था। तो इसको हो सकता है कुछ लोग निंदा करें, हाँ प्रभुपाद ने ऐसे क्यों किया, सन्यासी होते वो जो प्रचार के लिए गए, जिस घर में जाकर रहे उनके फ्रिज में प्रभुपाद एक तरफ अपने भगवान को भोग लगाने के लिए रखते थे जो वो खाएंगे भोग लगा के, और उसके साथ में कुत्ते को खिलाने वाला मांस रखा जाता था उसी फ्रिज में उसी जगह पर, प्रभुपाद ने सहन किया। तो ये बहुत सुंदर चीज प्रभुपाद अपने उदाहरण से सिखला रहे हैं कि हमें प्रचार के लिए हर चीज सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। मूल उद्देश्य प्रचार, प्रचार ही सार है, प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस। इसलिए हमारे आंदोलन में हर कुछ प्रचार के लिए होना चाहिए, कोई अपनी सुविधा के लिए नहीं, कोई अपने आनंद के लिए नहीं। हम बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रचार के लिए लेकिन अपने लिए नहीं। तो इसलिए भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि जब भी हम लोग, हमें कोई सुविधा कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो उसको प्रचार की दृष्टि में इस्तेमाल करें, उसमें बहकर जीवन के उद्देश्य को समाप्त नहीं कर दें, खो नहीं बैठें। जैसे प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के तात्पर्य में लिखते हैं कि मैंने जितने भी ग्रंथ अनुवाद किए हैं, श्री भगवद गीता भागवतम इत्यादि प्रभुपाद लिखते हैं, मेरे अनुयायियों को उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो फिर केवल खाएंगे पिएंगे और सोएंगे और इस मनुष्य जीवन के बहुमूल्य अवसर को अर्थात भगवत धाम जाने के अवसर को खो बैठेंगे। तो बहुत स्पष्ट प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। सो ऑल द डिसाइपल्स ऑल द फॉलोअर्स मस्ट रीड, हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो दे जस्ट खाएंगे पिएंगे सोएंगे, ईट ड्रिंक एंड स्लीप एंड विल लूज द चांस टू गो बैक होम बैक टू गॉड। तो ये हमारे लिए आवश्यक है। तो ये प्रभुपाद अपने उदाहरण से सिखलाते हैं कि प्रचार के लिए उन्होंने सारे शुरुआत के बहुत सारे ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनका वर्णन कर सकते हैं, क्या क्या प्रभुपाद ने सहा। हमने कई बार बताया वो प्रभुपाद जी की एक शिष्या हैं जिन्होंने 67 में ही ज्वाइन किया था प्रभुपाद को, तो बता रहे थे कि जगन्नाथ जी मंदिर बनाया, प्रभुपाद ने मंदिर बनाया, इनॉग्रेशन किया, अगले दिन प्रभुपाद जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं भक्त को क्या करना है सेवा, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा क्या सेवा करनी चाहिए, अभिषेक करो। तो अभिषेक क्या होता है उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा अभिषेक मीन्स बेदिंग, प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज प्रभुपाद को समझाना ना अभिषेक क्या होता, प्रभुपाद ने कहा अभिषेक मीन्स बेदिंग ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। प्रभुपाद चले गए, अगले दिन इन्होंने जगन्नाथ जी को अल्टर से उठाया, बाथरूम में लेकर गए, उनको नहलाया, ब्रह्मचारी आश्रम से गमछा लिया, पोछा, वापस ला के रख दिया, और यही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा था एटलीस्ट वंस इन अ वीक और वंस इन 15 डेज, तो यही कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि हम आपने जैसा कहा था, यू टोल्ड अस टू गिव बेदिंग टू द लॉर्ड एंड आपने कहा था हम लोग कर रहे हैं, और लिखा भी कैसे कर रहे हैं, हम लोग अल्टर से लेकर जाते हैं, वहां पर नहलाते हैं गमछा से। तो जस्ट मैं आप सोचिए, जब प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त, वो जब पढ़ेंगे कि जगन्नाथ जी के साथ ऐसा हो रहा है कि जगन्नाथ जी को उठा के बाथरूम में ले जाके वहां पर नहलाते हैं, गमछे से पोंछते हैं, वापस ला के रख देते हैं, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, प्रभुपाद ने लिखा आप जो भी कर रहे करते रहिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, 15 दिन में एक बार कर रहे हो, हफ्ते में एक बार करो। हम लोग एकदम हैरान, आज वो लोग सोचते हैं कि क्या प्रभुपाद, उसने प्रभुपाद ने डांटा नहीं, प्रभुपाद ने लिखा नहीं ऑल ऑफ यू विल गो टू हेल, ये क्या कर रहे हो, ठीक है जो कर रहे हो करते रहो, कम से कम सेवा कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने ये देखा कि कम से कम वो सेवा कर रहे, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने हमसे कहा कि जो भी हो भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो उस समय वो लोग जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, गॉगल्स पहनते थे, तो जो भी लाते थे वो जगन्नाथ जी को ऑफर कर देते थे। तो रोज जगन्नाथ जी को जीन्स ऑफर हो रही है, टी शर्ट ऑफर हो रही है, और जगन्नाथ जी स्वीकार कर रहे, क्या कर रहे हैं। तो ये लेकिन एक उसमें मूल बात थी कि जो प्रभुपाद ने कहा उन्होंने किया, प्रभुपाद ने कहा बेदिंग ऑफ द लॉर्ड, वो नहला रहे, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, कहीं इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं किया ठीक है या नहीं है, बस प्रभुपाद ने कहा करना है। प्रभुपाद ने कहा कि ऑफर एवरीथिंग, सब कुछ, जीन्स लाए, टी शर्ट लाए, गॉगल्स लाए, ऑफर। तो इसीलिए उन्होंने प्रगति की, इसीलिए आज वे लोग सारी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सारी दुनिया में प्रचार करते हैं। तो आज वे लोग कर सके उसका एक ही कारण, गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा, बस। कई शिष्य प्रभुपाद जी के कहते हैं हमें नहीं पता कृष्ण कौन है, हम नहीं जानते थे कृष्ण को, हम तो प्रभुपाद को जानते थे, जो प्रभुपाद ने कहा हमने किया। उन्होंने शिष्यों को कहा पाकिस्तान जाओ प्रचार करो, चले गए सन्यासी के वेश में पाकिस्तान, उस समय पे जहां इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही थी, काटा जा रहा था लोगों को, हिंदुस्तानियों को देखते ही हिंदुओं को मारा जा रहा था, उस समय सैफरन कपड़े पहनकर डंडा लेकर सर शेव करके प्रचार करने चले गए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा। हम ब्रह्मानंद प्रभु की बात बता रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने देह को छोड़ा वृंदावन में, तो ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे थे वो लोग चले गए, बस प्रभुपाद ने कहा पाकिस्तान में प्रचार करो, वॉर शुरू हो गई, इंडिया पाकिस्तान फंस गए ये लोग, और निश्चित था कि अगर पाकिस्तान में रुकते तो मारे जाते, क्योंकि वॉर शुरू हो गई, पाकिस्तान में हिंदुओं को मार रहे थे। तो उस समय ये लोग आए एयरपोर्ट पर, वो बता रहे थे हम लोग कैसे बचकर निकले, एयरपोर्ट पर आए और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अपना पासपोर्ट दिखाया, उनका पासपोर्ट अमेरिकन था और उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने दिखाया देखो हम अमेरिकन हैं और हम जाके एम्बेसी में लास्ट प्लेन, वो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट बंद होने वाला था, आखिरी प्लेन बाहर जा रहा था। दरअसल जब वॉर हो जाती है कंट्री में तो एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं, केवल एयरफोर्स के प्लेन उड़ते हैं वहाँ से। तो आखिरी प्लेन जा रहा था, उन्होंने पूछा सीट है, बोले कोई सीट नहीं है, फुल है। और इन्हें पता था कि अगर ये बाहर नहीं निकले इस प्लेन से तो मारे जाएंगे निश्चित। तो इन्होंने जाकर पासपोर्ट दिखाया, हम लोग अमेरिकन हैं, अगर आप हमें इस प्लेन पे नहीं जाने देंगे हम एम्बेसी में जाके कंप्लेन करेंगे। तो उस समय क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका वालों को बहुत महत्व दे रहा था क्योंकि सारा सपोर्ट वहां से आ रहा था, तो उन्होंने किसी तरह फिर उनको एक दो सीट वहां पर करके दी और वो लोग उस प्लेन से बाहर निकले। उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। ऐसी स्थिति में क्यों, केवल प्रभुपाद ने कहा। तमाल कृष्ण महाराज, श्रील प्रभुपाद, अमेरिका में चाइना को बड़ा निम्न माना जाता है, चाइना को, और वहां पर एक सेइंग है, कहावत है, अगर कोई कुछ करना नहीं चाहता तो वो कहता कि बेटर आई गो टू चाइना, वहां ऐसे कहते हैं, मतलब ये काम करने से अच्छा तो मैं चाइना चला जाऊं, मतलब इतना बेकार काम है ये, चाइना जाना बहुत बेकार है लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो भी बेकार काम। तो तमाल कृष्ण महाराज अमेरिका में बड़े हुए, उनको भी आदत थी कहने की, तो एक समय प्रभुपाद उनको कुछ करने के लिए कहीं जाने के लिए कह रहे थे और वो जाना नहीं चाहते थे प्रभुपाद को छोड़कर, तो मना कर रहे, प्रभुपाद कह रहे नहीं जाना है जाना, तो अचानक उनके मुख से निकला बेटर आई गो टू चाइना। वो आदत होती है ना, हम लोगों की भी निकल जाता, तो उनको वो आदत थी हाँ अमेरिकन होके कि बेटर आई गो टू चाइना। तो उन्होंने कहा बेटर आई गो टू चाइना, प्रभुपाद ने कहा ठीक है गो टू चाइना, जाओ चाइना में प्रचार करो। और तमाल कृष्ण महाराज गए, फिर प्रभुपाद ने छोड़ा ठीक है यू वांट गो टू चाइना गो टू चाइना। फिर वो चाइना में गए, आप जानते चाइना में उस समय क्या अवस्था थी, आप अगर भगवद गीता लेकर घूम रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। चाइना में तो बहुत, आज भी इतना नहीं है, अब थोड़ा खुल गया है, जैसे रशिया था चाइना था ये सब देशों में अलाउड नहीं था, चाइना में आज भी बहुत है वैसे। तो चाइना में गए प्रचार करने के लिए। तो ये गुरु के वचनों को पालन करने से भक्ति में प्रगति होती है, इसीलिए भक्ति में शुरुआत में हमें कृष्णदास बनने का प्रयास नहीं करना, हमें गुरुदास बनना है। बस जो व्यक्ति गुरुदास बन जाएगा वो स्वतः कृष्णदास बन सकता है। तो इसीलिए ये मार्ग है भक्ति में प्रगति का। आगे पढ़ते हैं, पूरे यात्रा में श्रील प्रभुपाद ने बहुत कम बोला, वो केवल महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका सीधा हाथ थे बीट बैग में था और वे जप कर रहे थे, मणियों पर जप कर रहे थे और बड़े धीरे धीरे जप कर रहे थे। जब विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर आया तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि शहर की जो इमारतें हैं वो छोटी छोटी होती जा रही हैं, क्योंकि ये न्यूयॉर्क के ऊपर उठ रहा था प्लेन, तो छोटी छोटी होती जा रही हैं। और उनको उस समय उनके कान में एयर प्रेशर के कारण, जब आप जानते जब प्लेन ऊपर नीचे जाता है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनको तकलीफ हो रही थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, उसके अलावा उनको कोई कष्ट नहीं था। वो बहुत आराम से बैठे हुए कृष्ण के नाम का जप बारंबार कर रहे थे। जैसे ही प्लेन उड़ा और फिर नीचे आने लगा तो उनका जप बहुत आराम से चल रहा था, वो जप ही करते रहे। और शहर की जितनी भी इमारतें थी जो बहुत छोटी छोटी दिख रही थी उनको खिड़की से वो देख रहे थे। जब यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट ने अनाउंस किया जब यूनाइटेड एयरलाइंस आई, जब एयरलाइंस के वहां तक पहुंचे तो करीब 50 हिप्पी वहां पर इकट्ठे हो गए। ये सब आए थे श्रील प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर, तो उनको पता नहीं था कि उस स्वामी कौन है, कैसे होंगे। ये पहली बार प्रभुपाद आ रहे हैं, हिप्पियों ने सुना है कोई वहाँ से आ रहे हैं न्यूयॉर्क से, तो यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, और अभी वे जानते नहीं हैं। तो एक एक हिप्पी जो उनमें थे वो बता रहे हैं, हम लोग बहुत अलग अलग तरह के लोग थे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर। मुकुंद ने एक जादूगर के कपड़े पहने हुए थे और बहुत सारी मालाएं अपने आसपास डाली हुई थी, और सैन ने एक शीप, यानि अब शीप जानते हैं, वोड़ी कॉल शीप इन हिंदी, शीप, हाँ, भेड़, भेड़ का, भेड़ के वस्त्र पहने हुए थे। उसके उसके शरीर से भेड़ की तरह बदबू भी आ रही थी। और मैंने एक घर में बना हुआ नीले रंग का जापनीज समुराई, समुराई समझते हो, लंबा सा पहनने के लिए होता है, वो पहना हुआ था जिस पर सफ़ेद रंग के धब्बे थे, और बड़ी बड़ी मालाएं सब तरफ थी, और चमड़े के जूते, और अलग अलग तरह के लोग, हाँ, लोगों ने चीज़ें पहनी हुई थी। तो देखिए, बता रहे हैं कि कौन प्रभुपाद को लेने आए थे। किस तरह के लोग, कोई जादूगर की बिस्में आया हुआ है, कोई भेड़ के बदबू आ रही है, कुछ है, ये लोग सब आए थे प्रभुपाद को लेने के लिए। बहुत थोड़े लोग उसमें से स्वामी जी को जानते थे, मुकुंद और उनकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय रामा, ये सब न्यूयॉर्क से थे, और एलन गिंसबर्ग वो भी वहाँ पर थे। थोड़े ही दिन पहले एलन एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ 200,000 लोग आए थे, वो एक गैदरिंग ऑफ द ट्राइब्स उसको कहा गया था, तो वो वहाँ के लिए आए थे। और आज एलन स्वामी भक्ति वेदांत को स्वागत करने के लिए वहाँ आए थे, जो वो बहुत महीने पहले न्यूयॉर्क में उनसे मिले थे। मुकुंद ने सबको याद दिलाया कि स्वामी जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर वे लोग सब हरे कृष्ण का जप करेंगे, हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। जैसे ही, मतलब मुकुंद समझा रहे थे कि जैसे ही स्वामी जी आए गेट से, हमें सबको कीर्तन करना है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, स्वामी जी के क्या अच्छा लगता है, कौन है स्वामी जी। बस ये थोड़े लोग उनको लेकर आ गए थे, आओ आओ स्वामी जी आ रहे हैं, तो कैसे कैसे लोगों को लाए थे उनका स्वागत करने के लिए। तो मुकुंद बता रहे थे सब लोग कीर्तन करना, तो ये सब लोग कीर्तन से, कीर्तन पहले कर चुके थे, जानते थे, और स्वामी जी ने जो न्यूयॉर्क में पार्क में कीर्तन किया था उसके बारे में उन्होंने सुना था, और उसके विषय में न्यूज़पेपर्स में भी आया था, तो उन्होंने पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने किया था। और अब उनमें से बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही लोग उतरने लगे और बाहर आने लगे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि कौन लोग आकर खड़े हुए हैं फूल लेकर स्वामी जी का स्वागत करने के लिए। तो जैसे वो लोग जपा कर रहे थे, जो यात्री आ रहे थे वो आगे जा रहे थे, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे, अचानक उनमें से स्वामी जी आए, जो भगवे वस्त्र धारण किए हुए, और ऐसे लग रहा था कि मानो उनका स्वर्ण वर्ण हो, वे आए। तो प्रभुपाद ने पहले से ये जो कीर्तन हो रहा था उसको सुन लिया था, और जैसे ही प्रभुपाद आए उन्होंने बहुत अच्छा, वो मुस्कुराने लगे, वो बहुत प्रसन्न थे और बड़े आश्चर्यचकित थे। तो उन्होंने सबके चेहरों को देखा, कुछ को वो पहचानते थे, लेकिन यहाँ पर करीब 50 लोग थे जो उन्हें, उनका स्वागत करने के लिए आए थे, और वो लोग सब कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। और इन सब को प्रभुपाद ने कहा नहीं था कीर्तन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे थे। सो मुकुंद बताते हैं कि हमने केवल स्वामी जी की ओर देखा, और फिर हम लोगों ने, हमने दंडवत प्रणाम किया, मैंने, मेरी पत्नी ने और मेरे मित्र ने जो हमारे साथ आए थे, और जितने भी वहाँ पर युवक खड़े थे उन्होंने भी हमें देखकर वैसे ही उन्होंने प्रणाम किया स्वामी जी को, ये जानते हुए कि यही तरीका है आदर करने का। देखिए आवश्यक होता, हम कई बार देखते हैं कि नए लोग आते हैं हमको पता नहीं होता है, या बच्चे आते हैं हमको पता नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि जब माँ बाप प्रणाम करते हैं प्रभुपाद को तो बच्चे भी देखकर प्रणाम कर लेते हैं। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोग सीखते हैं कि प्रचार के लिए आचरण बहुत आवश्यक है। मुकुंद ने उनको कहा नहीं कि आप भी सब चलो चलो सब प्रणाम करो दंडवत करो, कुछ नहीं कहा, उसने खुद प्रणाम किया और बाकी लोगों ने देखा कि अरे ये मुकुंद ये जानता है कि कैसे स्वागत करना है, तो ये प्रणाम कर रहा है तो हमें भी करना है, तो सारे 50 के 50 लोगों ने दंडवत प्रणाम किया। अब सोचिए क्या स्थिति हुई होगी, सैन फ्रांसिस्को में लोग जिन्होंने कभी देखा नहीं वो बोले ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं, अचानक 50 लोग नीचे झुक गए सब। वहां तो प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट को भी कोई झुककर प्रणाम नहीं करता है, वैसे भारत में भी नहीं होता है। तो देखिए इसीलिए सन्यासियों को महाराज कहा जाता है, राजाओं को जो नहीं मिलता वो महाराजाओं को मिलता है। तो कौन से प्रेसिडेंट कौन से प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका में झुककर प्रणाम करते जूते मारते हैं, आजकल सुना हमने किसी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह को तो कभी कभी, लेकिन सन्यासी आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ होगा। भारत में भले आश्चर्य ना हो लोगों को पता है, लेकिन सोचिए अमेरिका में जहां लोगों ने देखा नहीं वो चल रहे और अचानक 50 लोग जमीन पर लेट गए, तो बोले क्या हुआ, कहीं गोलियां चल रही हैं कि क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है शूट आउट होता है तो सब नीचे लेट जाते हैं, तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है मुकुंद जो लिख रहे हैं कि हमें अपने आचरण से प्रचार करना चाहिए, केवल वाणी से नहीं, केवल बोलने से नहीं, लेखनी से नहीं, आचरण से। आचरण से प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जैसा आचरण करेंगे नए लोग वैसा ही पालन करेंगे। तो अगर भक्ति में हमें लोगों को आगे बढ़ाना है तो हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए एक शिक्षक के लिए, क्योंकि जितने भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक हैं वो शिक्षक हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो एक शिक्षक के लिए आचरण है, ये आवश्यक है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसको अपने आचरण से अलग नहीं रखे। आजकल जो यूनिवर्सिटीज इत्यादि में होता है उनका सब्जेक्ट अलग है और कैरेक्टर अलग है, वो केवल सब्जेक्ट पढ़ाकर आ जाते हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कृष्ण भावनामृत के शिक्षक या प्रचारक ऐसे नहीं हो सकते, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं हो सकता कि हम सिखाएं कुछ बोलें कुछ माइक पर और हमारा आचरण अलग नहीं। हमें आचरण के द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए, आचरण के द्वारा प्रचार करना चाहिए, पहले आचार और फिर प्रचार, तब हम प्रचार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वैष्णव आचरण बहुत आवश्यक है अगर हम इस प्रचार के आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण बात हम लोग यहां से सीखते हैं कि ऐसे लोग जो प्रभुपाद को जानते नहीं थे वो प्रभुपाद के स्वागत के लिए खड़े हैं, केवल सुना उन्होंने कि प्रभुपाद जी वो स्वामी जी वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तन किया है, वहां कई हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी बना दिया, बस सुनने से। यहां पर भी तो कई सारे लोग खड़े हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से चलता रहा। प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी गाड़ी आई थी जिसमें प्रभुपाद बैठे और फिर वो उनको आगे के और लेकर गए, और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, बहुत बड़े शहर में आए थे एक दूसरे पाश्चात्य जगत में। और यहाँ पर लिख रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद वॉज हैप्पी टू बी इन अनदर बिग वेस्टर्न सिटी ऑन बिहाफ ऑफ His spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati and Lord Chaitanya. Śrīla Prabhupāda Paśchātya Jagat ke ek aur bade shahar mein aakar prasann hue. Kis liye? Isliye nahi ki bahut bada shahar hai, dekhne mein acha lag raha hai, thoda aanand lunga. Nahi. Apne guru Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur aur Chaitanya Mahaprabhu ke pratinidhi ke roop mein. To bhakt ka aanand kya hai? भक्त का आनंद भौतिक सुविधाएं नहीं है, इसलिए नहीं कि 50 लोग आए थे, गाड़ी थी, बड़ा शहर था, प्रभुपाद आनंदित थे, नहीं। भक्त का आनंद है ये देखना कि लोग भक्ति में आगे बढ़ें। और इसको देखकर वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद का स्वागत हुआ, उन्हें सैन फ्रांसिस्को मंदिर ले जाया गया जहाँ बहुत सारे भक्त पहले से कीर्तन कर रहे थे, और शिला प्रभुपाद वहाँ गए और वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स थे पत्रकार। तो एक रिपोर्टर से प्रभुपाद की बातचीत है। एक पत्रकार ने पूछा, नीचे आप सबको कृष्ण भावनामृत के लिए आमंत्रित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ नाम किए कि उनको भी आप आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ, हर कोई, आपको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, और भी कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, तो जो भी हो, हिप्पी हो, कोई और हो, व्हाट इज कॉल्ड एन एसिड हेड, वहाँ लोगों को अलग अलग नाम से पुकारते थे, तो कोई भी हो, उनको अगर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी ये शुरुआत में 67 में, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में बताएं, यस एवरी वन इंक्लूडिंग यू और एनीबडी एल्स बी ही और शी व्हाट इज कॉल्ड एन एसिड हेड और अ हिप्पी और समथिंग एल्स बट वंस ही इज एक्सेप्टेड फॉर ट्रेनिंग ही बिकम्स समथिंग एल्स फ्रॉम व्हाट ही हैड बीन बिफोर। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर उसको प्रशिक्षण मिल जाता है, कोई भी होने दो, हिप्पी होने दो या फिर कोई स्त्री हो पुरुष हो, प्रशिक्षण अगर उसको मिलता है, बट वंस ही इज एक्सेप्टेड फॉर ट्रेनिंग, उसका जीवन बदल जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ही बिकम समथिंग एल्स फ्रॉम व्हाट ही हैड बीन बिफोर। तो यहाँ प्रभुपाद प्रशिक्षण पर महत्व दे रहे हैं। ये कब दे रहे हैं? 67 में शुरुआत में ही प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इफ ही इज एक्सेप्टेड फॉर ट्रेनिंग ही विल चेंज जो पहले का जीवन है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण लें। आप देखिए कोई व्यक्ति एथलीट बनना चाहता है तो वो कई वर्षों तक प्रशिक्षण लेता है फिर किसी प्रतियोगिता में जाता है। कोई और डॉक्टर बनना चाहता है 5-6 वर्ष तक प्रशिक्षण लेता है फिर जाकर डॉक्टर बनता है। कोई भी किसी और चीज़ में, इवन कोई एक फिल्म स्टार बनना चाहता है कई वर्षों तक ट्रेनिंग लेता है, इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट्स, प्रशिक्षण लेता है। कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई कार्टूनिस्ट बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, ये सब प्रशिक्षण लेते हैं। तो फिर अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसको प्रशिक्षण क्यों नहीं लेना चाहिए? कोई प्रचारक बनना चाहता है तो उसको प्रशिक्षण क्यों नहीं लेना चाहिए? तो प्रभुपाद यहाँ स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये प्रशिक्षण जरूरी है। तो आगे पत्रकार पूछते हैं कि आपके आंदोलन के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं There are 4 prerequisites. 4 चीजें करनी चाहिए। पहली, I do not allow my students to keep girlfriends. मैं अपने विद्यार्थियों को girlfriend रखने की अनुमति नहीं देता। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद उस समय, प्रभुपाद समय स्थिति के अनुसार बोलते थे। अभी अगर प्रभुपाद कहते कि no illicit relationship, तो वो लोग कहते ये illicit है ही नहीं हमारे लिए, गर्लफ्रेंड्स रखना तो लीगल है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं आई डू नॉट अलाउ माई स्टूडेंट्स टू कीप गर्लफ्रेंड्स। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको गर्लफ्रेंड्स नहीं रखनी चाहिए। आशा करते हैं आप लोगों ने भी नहीं रखी है, प्रभुपाद का आदेश है, पालन कीजिए। आई प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इंक्लूडिंग कॉफी, टी एंड सिगरेट्स। तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए जिसमें चाय, कॉफी और सिगरेट्स। देखिए ये 1967 है, शुरुआत का आंदोलन है, पहली बार प्रभुपाद इस शहर में आए हैं और क्या प्रचार कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद एक प्रचारक को निर्भय होकर प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने सोचा नहीं पहली बार आया हूँ थोड़ा इनको ये सब नहीं बताऊँ, कुछ और बताऊँ कि हाँ हाँ सब ठीक है, नहीं, ये 4 चीज़ें करना चाहिए। I prohibit meat eating और मांसाहार नहीं, and I prohibit my students from taking part in gambling, जुआ खेलने में मैं उनको मना करता हूँ। तो देखिए बड़े निर्भयता से प्रभुपाद ने कहा, जबकि उनको कहा गया था स्वामी जी ये चीजें आप बोलेंगे तो वहां के लोग भगा देंगे आपको, क्योंकि वहां के लोग यही सब करते हैं, लेकिन इन्होंने वही चीजों को मना किया। फिर आगे रिपोर्टर पूछते हैं, देखिए किस स्थिति में प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद ने कह दिया ये सब नहीं करना, तो रिपोर्टर पूछते हैं डू दिस शैल नॉट कमांडमेंट्स, ये जो आपके आदेश है ये नहीं करना ये नहीं करना, एक्सटेंड टू द यूज ऑफ LSD मैरिजुआना एंड अदर नारकोटिक्स, तो ये जो आप कह रहे ये नहीं करना ये नहीं करना, क्या इनमें ड्रग्स भी आते हैं? अभी पूछ रहे हैं, बता दीजिए, मतलब चाय कॉफी नहीं पिए लेकिन ड्रग्स ले सकते हैं क्या, वो भी पूछ रहे हैं, तो ड्रग्स भी आते हैं LSD इत्यादि? हाँ, तो प्रभुपाद को पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं आई कंसिडर LSD टू बी एन इंटॉक्सिकेंट, LSD भी एक नशा है, आई डू नॉट अलाउ एनी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू यूज दैट और एनी इंटॉक्सिकेंट, तो मैं अनुमति नहीं देता। फिर प्रभुपाद लिखते हैं आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमारे लिए है, सबके लिए, हमें सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स, और उसके बाद टू टेक अ बाथ अर्ली इन द डे, नहाना चाहिए, एंड टू अटेंड प्रेयर मीटिंग्स 3 times a day, मंदिर में 3 बार आरतियां अटेंड करने से आना चाहिए। Our sect is one of austerity. It is the science of God. Prabhupada कहते हैं हमारा जो आंदोलन है ये विज्ञान है, भगवान को समझने का विज्ञान है और तपस्या का आंदोलन है। देखिए कब प्रभुपाद ने ये कहना शुरू किया, शुरुआत में austerity वहां के लोगों के लिए हिप्पी, जिन लोगों को केवल जीवन में आनंद चाहिए उनको प्रभुपाद समझा रहे हैं आवर सेक्ट इज ऑफ austerity, और ये रिपोर्टर को कह रहे हैं ताकि जाके पब्लिश करो न्यूज़पेपर में कि हम तपस्या करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए ये चीजों को लेना चाहिए हमें जीवन में, ये प्रभुपाद के आदेश हैं, उनके जिन्होंने आंदोलन बनाया, उनके जिन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत दी, उनके जो ये चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, तपस्या। तो प्रभुपाद कहते हैं आवर सेक्ट इज ऑफ austerity, वन ऑफ austerity, हमारा आंदोलन तपस्या का है, तो हम सबको तपस्या वैराग्य त्याग के लिए तैयार होना चाहिए, बहुत ज्यादा आनंद में नहीं पढ़ना चाहिए, आनंद में पढ़ना ही नहीं इस भौतिक जगत के, तो इसलिए तपस्या बहुत आवश्यक है। Anyway, आगे की बातें हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, भी समय हुआ है, लेकिन इस प्रसंग से शुरुआत से अब तक जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उसको सार के रूप में फिर से बताते हैं। सबसे पहली शिक्षा क्या दी प्रभुपाद ने, किसी को याद है? शुरुआत में सबसे पहली शिक्षा जो हमने एक लाइन में, किसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए? कृष्ण के। तो प्रभुपाद सबसे पहली शिक्षा ये देते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, कृष्ण के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और फिर आगे प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज किया, प्रचार के लिए कॉम्प्रोमाइज आवश्यक है नहीं तो प्रचार नहीं होता। और फिर आगे प्रभुपाद अंत में समझा रहे हैं कि कैसे हमें इस आंदोलन को, ये तपस्या का आंदोलन है और तपस्या को जीवन में अपनाना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न किसी के, कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ और प्रभुपाद जी के विषय में इस संदर्भ में कोई और कहना चाहे? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।